सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग कल के ही विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं, हालांकि वे हैं छोटी छोटी ही, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बारे में आपके पास जानकारियां होनी चाहिए, तो पहले उन्हें देख लेते हैं। आपको मालूम है कि गोवा में हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चल रहा है, समाप्त हो गया, अब तो संपन्न हो गया है। कल उसमें एक थोड़ी सी विवादास्पद बात हुई। देखिए, होता क्या है कि जो घटनाएं होती हैं, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जैसे जिनका उपयोग एक स्वतंत्र प्रश्न के रूप में किया जा सकता है, किया जाता भी है। और जब मैं स्वतंत्र प्रश्न के रूप में कह रहा हूं तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ खबरें और घटनाएं इस तरीके की होती हैं जो स्वतंत्र रूप से तो प्रश्न बनने की क्षमता से लैस नहीं होती हैं, लेकिन कंटेंट के रूप में उनका बड़ा महत्व होता है। जैसे आलू गोभी की सब्जी, तो आलू और गोभी तो एक बड़ी घटना हो गई है ना। सब्जी तो आलू और गोभी की ही है, लेकिन उसमें नमक भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं। बिना नमक, मिर्च और मसाले के तो सब्जी नहीं बनेगी। यही है फैक्ट्स, यानी कि तथ्य। बिना तथ्य के जो घटनाओं के ऊपर जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो महत्वपूर्ण नहीं हो पाएगा आपका आंसर, वजनदार नहीं हो पाएगा, है ना। मसालों से मसालेदार उत्तर नहीं हो पाएगा। इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इस फ्रेज को उपयोग में मत लाइए, मतलब आपका जो उत्तर है वो प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। जैसे अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात कर रहा था, तो उसमें इसराइल के जो एक फिल्मकार हैं नदव लैपिड, उन्होंने हमारे यहां जो फिल्म आई थी कुछ समय पहले द कश्मीर फाइल्स, इस पर एक टिप्पणी की। उनका कहना यह था कि ये जो फिल्म है ये बेसिकली प्रोपेगंडा है। प्रोपेगंडा है कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, आप कह लीजिए कि मुस्लिमों के खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगंडा है, या जो कश्मीरी पंडित रहे हैं उनके फेवर में राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने का एक प्रोपेगंडा है, शायद इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा होगा। मालूम है आपको कि जब ये फिल्म आई थी तब भी इस तरह के विवादास्पद बिंदु उस समय उभर रहे थे। तो जब उन्होंने ये बात कही तो डेफिनेटली ये हमारे लिए थोड़े से अपमान की बात थी, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब कोई भी फिल्मकार फिल्म बनाता है तो अपनी बात रखता है, वो अपने ढंग से अपनी बात रखता है। आप उसे प्रोपेगंडा कैसे कह सकते हैं? आपको क्या मालूम है कि ये प्रोपेगंडा है? क्या आप उस घटना के साक्षी रहे हैं? क्या आप वहां गए हैं? क्या वहां आपने लोगों से बातें की हैं? तो कैसे आपने कह दिया कि यह प्रोपेगंडा है? तो इसके बाद जो इसराइल के राजदूत थे उन्होंने माफी मांगी भारत से, और उनकी आलोचना भी की, उनके कथन की आलोचना, क्योंकि जब इस तरह की बातें कही जाती हैं और वो भी इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप बात कह रहे हैं तो संबंधों के खराब होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और अब आप जानते हैं कि भारत और इसराइल के संबंध अभी बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत मित्रता के संबंध है, बहुत ही सहयोगपूर्ण संबंध है। तो अब आप देखिए, ये एक घटना है और इस घटना को के आधार पर आप भारत इसराइल संबंधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कला के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो बात है, हो सकता है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में प्री में पूछ लिया जाए, और इसी संदर्भ में जब आप आज के एक दो एडिटोरियल्स इस पर लिखे गए हैं, न्यूज आइटम के रूप में भी अखबारों में है, तो वहां आपको एक शब्द और मिलेगा, एक फिल्म का नाम मिलेगा, सिंडलर्स लिस्ट। सिंडलर्स लिस्ट बेसिकली एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा, होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है जनसंहार। आपको मालूम है कि जो हिटलर था, किस तरीके से यहूदियों के खिलाफ उसने एक तरीके से जनसंहार किया था। वाशिंगटन में होलोकास्ट लेकर के एक म्यूजियम बना हुआ है, वो हम लोगों ने देखा है। जब आप उस म्यूजियम में जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बकायदे जहां यातना शिविर थे हिटलर के, वो भी मुझे देखने का मौका मिला है, जो वारसा से थोड़ी सी दूर पर है। जब आप वहां जाएंगे और जब वहां के किस्से कहानी सुनेंगे कि किस तरीके से यहां लोगों का संहार किया जाता था, तो आपकी रूह कांप जाएगी। फिर से मैं उसी फ्रेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि रूह कांप जाएगी से मतलब बेहतर संवेदनात्मक वाक्य मुझे कोई भी नहीं जान पड़ रहा है। तो ये यहूदी थे जिन्होंने इस तरह की यातनाओं को झेला है, और जो नदव लैपिड हैं वो यहूदी हैं, इसराइल के रहने वाले हैं। तो जिन्होंने खुद इस यातना को झेला है, वो कैसे इस तरह की यातना की को प्रोपेगंडा कह सकते हैं? तो क्या होलोकास्ट भी प्रोपेगंडा थी? क्या सिंडलर्स लिस्ट जैसी भी फिल्में जो बनी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हुई, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, तो क्या ये प्रोपेगंडा है? तो ये कुछ तथ्य मैं आपको, खासकर कला आपके चूंकि सिलेबस में है, तो उस दृष्टि से बता रहा हूं। अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि जो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां साइबर अटैक हुआ है और किस तरह से जो सारे के सारे डेटा हैं वो चोरी कर लिए गए हैं, उसको लेकर के सरकार भी बहुत परेशान है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर एम्स जैसे संस्थान के डेटा के साथ ये हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, तो फिर और संस्थान के बारे में तो क्या कहा जा सकता है। और साइबर क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का है, तो उसका ये लेटेस्ट फैक्ट है। दोस्तों, कल हम लोगों ने चीन के बारे में शायद बात की थी, कल या परसों, की किस तरह से चीन में धीरे धीरे जो जनता है वो आक्रोश में आ रही है सरकार के खिलाफ। और आक्रोश में आने का उसका कारण है जो चीन की पॉलिसी है, जीरो कोविड पॉलिसी। कल मैंने या परसों इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जीरो कोविड पॉलिसी। मुझे लगा कि पता नहीं जीरो कोविड पॉलिसी कि जो सही डेफिनेशन है वो आपको मालूम है या नहीं। सुनने पर तो यही लगता है कि हम चीन से जो कोविड के जो केसेस हैं उनको शून्य कर देंगे और उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसका जो सही संदर्भ है, जो सही डेफिनेशन है, वो ये है कि जहां भी कोविड के पेशेंट मिलेंगे वहां तुरंत लॉकडाउन का लगा दिया जाएगा। थोड़े से भी पेशेंट मिले तुरंत लॉकडाउन, संस्थाएं बंद, आवागमन बंद, लोग बिल्कुल क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। यह है जीरो कोविड पॉलिसी। तो वहां की जो जनता है वो इसके खिलाफ उठ करके खड़ी हुई थी और अब तो वहां से सीधे वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की मांग कर रही है। एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो अभी अध्यक्ष बनाई गई है, आपको उनका नाम मालूम होगा, उनका नाम है पीटी उषा, जो हमारे यहां की धाविका रही हैं। और लगभग 95 साल के इतिहास में, भारतीय ओलंपिक संघ का इतिहास लगभग 95 साल पुराना, 95 ईयर्स, ये पहली महिला हैं जो इस पद तक पहुंची हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर। एक सूचना हो गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप इस सूचना का इस्तेमाल विमेन सशक्तिकरण के मामले में भी कर सके? जब भी आप महिलाओं के शक्ति के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, उनके एम्पावरमेंट के बारे में कुछ आंसर लिख रहे हों, तो इसे डालें कि किस तरीके से ओलंपिक संघ की अध्यक्ष एक महिला बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं प्लेयर रही है, ये और भी अच्छी बात है। यानी कि जो प्रोफेशनल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनको तरजीह दी जा रही है। अदरवाइज आप किसी पॉलिटिशियन को बना दीजिए, किसी और को बना दीजिए जिनका खेल से कोई संबंध नहीं, हाँ थोड़ी बहुत रुचि हो सकती है लेकिन उससे बात बनती नहीं है। तो प्रोफेशनल्स अगर फील्ड में आएंगे और उन्हें इस तरह के पदों पर बैठा करके जब उनके अनुभवों का हम लाभ लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो संस्थाएं ज्यादा फलेंगी फूलेंगी, ज्यादा सक्रिय हो सकेंगी और अपना ज्यादा योगदान भी कर सकेंगी। तो दोस्तों, ये जो निर्णय है ये वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर बातें करते हैं। मुझे सच पूछिए तो इस बात की बेहद खुशी है और इसके लिए मैं आप सभी अपने सतर्क श्रोताओं शब्द का मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रशंसा करना चाहूंगा कि अभी मैंने जो पावर ऑफ एलिमिनेशन की बात शुरू की है, इसका आप लोगों ने खुले हृदय से स्वागत किया है, बल्कि ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि खुले मस्तिष्क से स्वागत किया है। अगर आप मेरे इस विषय का स्वागत कर रहे हैं तो मुझे ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, और इसकी मुझे खुशी है कि मुझे बाध्य होना पड़ रहा है कि नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी की जो आपकी दिशा है वो कहीं ना कहीं तो बेहतर है। इसकी तकनीक को आप समझ रहे हैं, इनकी जरूरतों से आप परिचित हो रहे हैं और उन जरूरतों को स्वीकार करने के लिए खुले मन से तैयार हैं। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को यह एहसास होता है तो डेफिनेटली वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सतर्क हो जाता है, और आप लोगों ने मुझे सतर्क किया है, इसके लिए मैं पूरी के पूरी अपनी टीम के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, पावर ऑफ एलिमिनेशन, प्री एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता है कि इस क्षमता के बिना सफल हुआ जा सकता है। आइए इसको अब मैं आगे बढ़ाता हूं। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पावर ऑफ एलिमिनेशन को आप अपने अंदर डेवलप कैसे करेंगे, ये तो आप समझ गए हैं कि ये होना चाहिए और ये क्या है आप यह भी समझ गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब हम इस क्षमता को अपने अंदर डेवलप करें कैसे। और अगर मैं ये बात नहीं बताता हूं तो सीधी सी बात है कि मैं इस विषय को उठाने का ही अपने आप को अपराधी घोषित करूंगा, क्योंकि अगर मैं बता ही नहीं सक रहा हूं तो फिर मुझे ये विषय क्यों उठाना चाहिए। लेकिन मैं डेफिनेटली इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को जो भी मेरी अपनी थोड़ी सी समझ है वो बताना चाहूंगा। पावर ऑफ एलिमिनेशन एक बहुत ही जबरदस्त क्षमता है और याद रखिए कि ये क्षमता ऐसा नहीं है कि केवल सिविल सर्विस के लिए ही जरूरी है, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी जरूरी होती है। धीरे धीरे आपके अंदर वो तो आप देखेंगे कि वो दृष्टि पैदा हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले मैं एक सिद्धांत देना चाहूंगा। हो सकता है कि आगे चलकर के कल परसों में एक और सिद्धांत दूं, लेकिन घबराइए मत, मैं सिद्धांत को व्यवहार के स्तर पर ही ले जाऊंगा। सिद्धांत से बात बनती नहीं है, लेकिन बिना सिद्धांत के भी बात नहीं बनती, क्या कीजिएगा। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, वॉरेन बफे, और अगर नहीं सुना है तो ये अफसोस की बात है कि फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आप उनका नाम मालूम है, वॉरेन बफे अमेरिका के हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं वॉरेन बफे। उन्होंने एक थ्योरी दी है, वो थ्योरी है 5/25 की थ्योरी। कहीं कहीं ये उल्टा भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, 25/5 थ्योरी, यानी कि 25/5 या कह लीजिए 5/25, एक ही बात है। ये थ्योरी उन्होंने दी है। इस थ्योरी का मतलब क्या है? देखिए, वॉरेन बफे आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। किसी समय में तो वो दूसरे नंबर के विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब शायद तीसरे चौथे पांचवें पर आ गए होंगे, लेकिन 10 के अंदर तो वे अभी भी हैं। और उन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी वो की थी जो कोका कोला वगैरह की जो बोतलें होती हैं ना, उनके ऊपर के जो ढक्कन होते हैं उन्हें इकट्ठा करके वो बेचा करते थे तो अपना खर्च निकाल पाते थे, और आज वो दुनिया के सबसे धनी 10 व्यक्तियों में से एक हैं। ये उनका रेंज है, कैरियर है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये 5/25 की थ्योरी दी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, आप 25 काम कर रहे हैं, 25 काम कर रहे हैं, तो उसमें केवल 5 काम ही ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट कह लीजिए 4-6 तक बढ़ा दीजिए, ऐसे होते हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, यही आपके मुख्य काम हैं। टोटल तो लिस्ट में 25 हैं, लेकिन जो आपको ध्यान देना चाहिए, या आप अनजाने में ऐसा ही करते हैं, जानबूझ करके नहीं करते, लेकिन अनजाने में ही आपसे ऐसा होता रहता है, तो उनमें सिर्फ 5 ही होते हैं। क्या मुझे अपनी बात यहीं समाप्त कर देनी चाहिए? मुझे लगता है कि कर देनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहेगी, कल हम इसे पूरा करेंगे, पूरा तो करेंगे ही, आगे बढ़ाएंगे भी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रवि दत्त, रोहिताश गुर्जर जयपुर से, हर्षिता बदगुजर, राहुल पूनिया और अनामिका विमल प्रयागराज से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।